ओम शांति। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। चारों ओर है खुशियाँ छाई, सभा में दादी जी आएंगे। चारों ओर है खुशियाँ छाई, सभा में दादियाँ आएंगे। स्वागत में सभी झूम रहे हैं, देते सभी बधाई है। स्वागत में सभी झूम रहे हैं, देते सभी बधाई है। धन्य धन्य सरगम के स्वर है, धन्य धन्य सरगम के स्वर है, धन्य हमारा मधुबन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। पुलक उठे हैं हर्ष हृदय के, भावों का भंडार लिए। पुलक उठे हैं हर्ष हृदय के, भावों का भंडार लिए। पल के राह निहार रही थी, स्वप्न अभी साकार हुए। पल के राह निहार रही थी, सपने अभी साकार हुए। धन्य धन्य आमंत्रित जन है, आमंत्रित जन है, उल्लासित हर क्षण क्षण है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। धन्य धरा है, धन्य गगन है, धन्य हमारा मधुबन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित हम सब का मन है। आपके शुभ आगमन से हर्षित सब का मन है।
आप सभी की तालियां इसमें सहभागी बने इस सम्मान में।
भारत फिर भरपूर बनेगा, हो भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोदी से भरी जमी होगी।
वो भारत जिसमें हर बालक श्री कृष्ण, हर बाला राधा कहलाती थी, फिर से ऐसा ही भारत होगा, जहां सुख शांति संपन्न दैवी स्वराज्य होगा।
ओम शांति। इंदौर जोन की इस सुमधुर सांस्कृतिक संध्या में हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय हमारी जानकी जी पधार रही हैं, जिनका हम सभी करकंदोनी के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं।
पहने माला होगी हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोदी से भरी जमीन होगी। कमी होगी
अब वो दिन दूर नहीं जब इस भारत के भाग्य का सितारा विश्व गगन पर चमकने वाला है और हमारी ये देवी समान आत्माएं इनका मान इतना बढ़ेगा।
अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोदी से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी,
भारत फिर भरपूर बनेगा।
जैसा ये भारत की महिमा है कि ये भारत विश्व का जगत गुरु था, ये वही धरती है आबू की धरती जिस पर स्वयं भगवान आते हैं। कितनी गौरव की बात है कि हमने इस पर जन्म लिया।
वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य आबू माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोदी से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोदी से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा,
भारत
भारत फिर भरपूर बनेगा।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत गाया युगरतन भाई ने। अभी बहुत सुंदर डांस होने जा रहा है, रिंग डांस, शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कुमारियों द्वारा प्रस्तुत। आइए इन छोटी छोटी कुमारियों का नृत्य हम सभी देखेंगे। पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चियां और भी कलाओं में कितने निपुण हैं। और इसके पश्चात आता है बहुत सुंदर ड्रामा आबू तीर्थ महान। क्यों महान है? क्योंकि हमारी आदरणीय दादियों ने इस महान तीर्थ भूमि में तपस्या की है, इसीलिए महान बना है। तो अभी देखेंगे आबू तीर्थ महान, बहुत सुंदर ड्रामा, शांति निकेतन की, शक्ति निकेतन की, इंदौर हॉस्टल की कन्याओं द्वारा। तीर्थ महान। परंतु इसके पहले एक बहुत सुंदर भिलाई का ड्रामा है, प्रभु तुम कहां हो। ये बहुत छोटे छोटे बच्चों ने तैयार किया है। इन बच्चों का नाम है डिवाइन ग्रुप। ये 2 साल से बच्चे ज्ञान में आए और उन्होंने अपनी पूरी धारणा के साथ अपने इस 2 साल को बिताया और उन्होंने एक बहुत सुंदर ड्रामा तैयार किया, वह है प्रभु तुम कहां हो। तो बड़ी ही तन्मयता के साथ ये बच्चे आ रहे हैं आपके सामने अपना ड्रामा प्रस्तुत करने के लिए।
सोचा था इस खूबसूरत दुनिया में हर खुशी नसीब होगी, हर मंजिल दिल के करीब होगी, लेकिन खुदा भी भला क्या करे, जिनकी किस्मत मुझ जैसी बदनसीब होगी। हे ईश्वर, तुमने तो ये दुनिया अपने जैसी बनाई थी ना, हर रिश्ते साथ देने के लिए बनाए थे ना, फिर क्यों कोई मेरे साथ नहीं, क्यों लोग मुझे समझते नहीं, क्यों किसी को मेरे भावनाओं की कद्र नहीं। इंसान तो फिर भी साथ छोड़ देते हैं, पर हे ईश्वर, तुमने तो कहा था ना कि कोई साथ दे ना दे, कोई रहे ना रहे, पर तुम हर पल मेरे साथ रहोगे। पर कहाँ हो तुम? हर पल मैं अकेली हूँ इस नरक में, कहाँ हो तुम? मेरे जीवन के हर ठोकर में कहाँ हो तुम? मेरे जीवन के हर ठोकर में तुम क्यों नहीं आए? तुमने तो वादा किया था ना कि मेरे साथ चलोगे, पर कहा हो तुम? क्या इस इंसानों की दुनिया में तुम भी इंसान बन गए? तभी तो दुख में मुझे छोड़ चले गए। क्या तुम्हारी कही हर बात कल्पना थी? क्या तुम्हें मेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? अब तो मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, किस्मत से धोखा खाकर। आज मैं जिंदा तो हूँ, पर क्या मैं सचमुच जी भी रही हूँ? जब तुमने ही मेरा साथ नहीं दिया, तो हे ईश्वर, मैं किसी से क्या इच्छा रखूँ? और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी आत्मा और शरीर दोनों ही अलग हो गए। अब तो मेरा दिल चित्कार कर यही कहता है, क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी? कौन है जो ले सके आंसू मेरी? कोई नहीं समझता यहाँ ये वेदना मेरी। क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी? क्या करूं लेकर संवेदना तुम्हारी?
तो माम सक्यसे द्रष्टुम नेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम। हे मीठे बच्चे, तुम जिस प्रकार जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो, मैं तो उसी रूप में तुम्हारे सामने हमेशा प्रस्तुत रहता हूं, क्योंकि किसी न किसी रूप में मैं ही तो तुम्हारे साथ चलता हूं। पर हे मेरे लाडले बच्चे, ये तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम देह नहीं, देह से परे निराकार एक आत्मा हो? तो मैं भी तो साकार और आकार से परे एक परम ज्योति हूं, फिर कैसे मनुष्यों के बीच प्राप्त कर पाओगे मुझे? मैंने तो तुम्हें मेरे जैसा बनाया, सर्वशक्ति का बोध कराया, अपार क्षमता का ज्ञान दिया, पर फिर क्यों मेरे सर्वशक्तिवान बच्चे तुम संबंधों से हार गए? हे मेरे सिकिलदे बच्चे, मैंने तुम्हें इतनी क्षमता देने के बाद भी अकेला कहां छोड़ा? तेरे जीवन के हर पल में तो परछाई बन सदा तेरे साथ चला, हर परिस्थिति के कांटों में तू तो मेरी गोद में ही था। तुझे रोता देख क्या तू जानता है कि मुझ पिता के हृदय को कितनी पीड़ा होती होगी? हे मेरे अति प्रिय मीठे बच्चे, एक बार, सिर्फ एक बार अपनी मन की आंखें खोल कर तो देख, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर तो देख, तो तुझे पता चलेगा कि तू तो मुझे भूल भी जाता है, पर ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं तुझे भूलता हूं। हे मेरे बच्चे, मैं तो तेरे हाथ को सदा थामे रखता हूं, तुम ही हाथ छुड़ाकर भटक जाते हो। अब तो मेरे बच्चे जागो, मैं तो तुम्हारे लिए निराकार होते हुए भी साकार में आता हूं। मैंने वायदा किया था कि कल्प के अंत में आकर पुनः कल्प का आदि करूंगा, यह वही संगम का समय है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, चाहे सारी दुनिया तुम्हारा साथ दे व न दे, पर मैं सदा तेरे लिए तेरे साथ साय की तरह रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय सिकिल दे लाडले बच्चे हो, जहां बच्चे वहां बाप है ही। हे मेरे बच्चे, मैं कब से पलके बिछाए तुम बच्चों का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेरी बाहों में समा जाओ, मैं केवल तुम्हारे लिए हूं, सदा तुम्हारे पास हूं, सदा तुम्हारे पास हूं।
पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे।
हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे।
तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहाँ को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह।
तू न जाने आस पास है खुदा,
आसपास है खुदा, तू न जाने आसपास है खुदा।
मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है।
मान ले मर्जी मेरी है,
तू हम सफर न तेरा, जब कहीं साया मेरा रहेगा तब वही।
तुझसे कभी न एक पल भी मैं जुदा,
तू न जाने आस पास है खुदा,
तू न जाने आस पास है खुदा,
आस
पास। आबू तीरथ महान कैसे महान है, इस पर बहुत सुंदर ड्रामा है शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कुमारियों द्वारा। कहा जाता है सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वास्तव में अभी तक तो सब तीरथ थे, लेकिन गंगा और सागर का मिला, जहाँ हमारी आदरणीय दादियों ने तपस्या की, प्यारे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, तब तो ये आबू तीरथ महान बना। तो देखें कि कैसे तपस्या हुई और ये आबू तीरथ महान बन गया।
शिवाय ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये संत महात्मा हैं जिन्होंने प्रभु दर्शन की अभिलाषा में कठिन तप व साधना करते हुए वर्षों व्यतीत कर दिए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे हरिहर, अब तो दरस दिखा दे, तुझे पाने की चाहत में मेरे प्राण व्याकुल हैं। बस एक झलक पालूं, फिर तो ये श्वासों की संपदा भी तुझे अर्पित कर दूंगा।
आचार्य जी, हमने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, हर दिशा के प्रत्येक तीर्थ का भ्रमण किया, कोई स्थान शेष नहीं जहां भगवत छवि की प्राप्ति की चाह में पग न बढ़ाए हो। लेकिन
लेकिन लेकिन से तुम्हारा आशय क्या? तुम रुकना चाहते हो? हमारा कोई भी त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा मित्र, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। याद रखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम पर जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है।
साधु साधु,
अभी भ्रमण है तू, पश्चिम दिशा शेष है गुरुवर।
तो फिर विलंब कैसा, चलो आगे बढ़ें।
सभी पश्चिम दिशा की ओर अबाध गति से बढ़ते हैं और सहसा उनके कदम रुक जाते हैं।
ओहो, कितना सुरम्य वातावरण है यहाँ का।
आचार्य, ये भूमि तपस्या हेतु उपयुक्त प्रतीत होती है।
अवश्य, चलो तनिक विचरण करके देख लें।
वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रांतों व विदेशों से कुछ ब्रह्मवत्स प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमते गाते चले आ रहे हैं।
अरे दुष्टों, दिखता नहीं है क्या?
ओहो महात्मा जी, वो क्या है ना कि इश मिलन की ललक में हम ऐसे खोए हुए थे कि हमें अपनी ही सुधबुद्ध न रही, इसलिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुनिवर, हमें माफ कर दीजिए।
तो क्या आप सभी किसी तीर्थ यात्रा के पथिक हैं?
तीर्थ महात्मन, हम तो सर्व तीर्थों में महान तीर्थ आबू की पावन धरा पर ही खड़े हैं।
ये एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हमारी जन्मों जन्म की प्रभु मिलन की तीव्र कामना पूर्ण हो गई है और आज पुनः इस प्रभु मिलन हेतु ही जा रहे हैं और प्रति वर्ष जाते हैं।
प्रभु मिलन के लिए जा रहे हैं और प्रति वर्ष जाते हैं ये देखो, ये तो हमें भी चुनौती दे रहे हैं। अति उत्तम। ए मंदबुद्धि, हम वर्षों से त्याग और तपस्या करते आ रहे हैं, जिसके बावजूद भी आज तक हमें प्रभु का दीदार न हो सका, और तू गृहस्थ में बैठे प्रभु प्राप्ति की दुहाई दे रहा, और तू हमारा परिहास करने का दुस्साहस कर रहा है। तेरी इस दृष्टता के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ।
क्षमा मुनिवर, क्षमा। परंतु ये सत्य है, यदि आपको कोई कष्ट न हो तो आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए।
देखना क्या है, तुम स्वयं तो भ्रमित हो ही और हमें भी भ्रमित कर रहे हो।
महात्मन, एक बार तो देख लीजिए कि भ्रम है या सत्य।
आचार्य, देखे बिना निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है?
हाँ हाँ हाँ, तो तुम लोग जा सकते हो।
नहीं नहीं गुरुदेव, सत्य का मूल्यांकन तो आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपका चलना अनिवार्य है आचार्य।
ठीक है, चलो।
तीर्थ जहान में आप महान आते यहाँ भगवान, ऋषियों की भूमि में पावन पावन है प्यारा मधुबन। है तीर्थ जहान में आप महान आते यहाँ भगवान, ऋषियों की भूमि में पावन पावन है प्यारा मधुबन। तीर्थ जहान में अब महान आते यहाँ भगवान, ऋषियों की भूमि में पावन पावन है प्यारा मधुबन।
अद्भुत, इतना विस्मयकारी सभागार, इतने विशाल जनसैलाब के बावजूद इतनी अप्रतिम शांति।
ये मनभावन दृश्य देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो वज्र हृदय पर कोई तरल रक्त की धारा फूट पड़ी हो। क्या ये सभी प्रभु मिलन से तृप्त आत्माएं विराजमान हैं?
जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना।
यहाँ तो अंतरानंद का महासंगीत गूंज रहा है। देखिए ना गुरुदेव, हर चेहरा कितना मग्न प्रतीत हो रहा है।
आचार्य, आचार्य, इतने प्रफुल्लित वातावरण में आप क्या सोच रहे हैं?
मैं सोच रहा हूं और देख भी रहा हूं कि सचमुच इनके मुखमंडल से जो तृप्ति झलक रही है वो तो परमानंद की अनुभूति के बाद ही संभव है। अवश्य अभी तक तो मैं भ्रम में था, लेकिन यहां आकर मेरा भ्रम सत्य में परिणित हो गया। परंतु
तो अब परंतु कैसा गुरुवर?
एक सोच बार बार मन को अंदर तक कचोट रहा है कि क्या आज तक मेरा किया सारा तप वृथा था? हे प्रभु, तुम्हें भी इतना पक्षपात शोभा नहीं देता। हरिहर, मेरे जैसे कितने ही संत महात्माओं ने तुम्हारे एक दीदार की आस में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, परंतु एक झलक न पा सके, नेति नेति कहकर चले गए, और ये सभी इतने साधारण जनमानस, तुम इनके इतने अपने हो गए और हम पराए ही रह गए। तो क्या हम पराए रहकर सदा तरसते ही रह जाएंगे? नहीं नहीं प्रभु, तुम इतना अन्याय नहीं कर सकते। भगवान, तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते प्रभु, कभी नहीं, कभी नहीं प्रभु। ओ मेरे सिकिलधे बच्चे, उठो, तुम्हारे कठिन तप से मेरा विराट हृदय द्रवित हो गया। अब तुम्हारी तपस्या समाप्त, मैं ही तुम्हारा सच्चा पिता हूँ और मैं ही समस्त आत्माओं एवं सर्व धर्मात्माओं का भी पिता, परम पिता, परम सद्गुरु, परमात्मा शिव हूँ।
अच्छा, तो आप समस्त आत्माओं के पिता हैं?
हाँ, ये सत्य है।
ओ विश्व नियंता शिव बाबा, आपको हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे ईश्वर, आपको सम्मुख देखकर इन अश्रुपूरित आंखों को स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है। हे सुखदाता, आपने तो दरस देकर मेरे दुखते घावों पर जैसे स्नेह लेप लगा दिया हो। ओहो भगवन, बस आपके चरणों की रज पालूं, उसके बाद तो मृत्यु भी आ जाए तो मुझे खेद नहीं।
चरणों में नहीं बच्चे, अब तो तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है।
न जाने कौन सा शुभ नक्षत्र था जो हमें पिताओं के पिता परम पिता, गुरुओं के गुरु परम सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है। आज हमारा रोम रोम पुलकित होकर गुनगुना रहा है और हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये दरबार ही अनोखा और सच्चा दरबार है।
मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार सुहाना है, यहाँ दर्शन होते हैं, दीदार सलोना है। दरबार सुहाना है, दीदार सलोना है, मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार सुहाना है, सतगुरु प्यारे का दरबार सुहाना है। बिगड़ी किस्मत जन्मों की इस दर पे सवरती है, ये मान सरोवर है, यहाँ हम सब टोली है, यहाँ रोज दिवाली है, यहाँ प्रभु संग होली है।
गुरु प्यारे का दरबार सुहाना है, यहाँ दर्शन होते हैं दीदार सलोना है।
हे बंधु, एक विचार मन में कौंध रहा है कि वैसे तो सारा सभागार ही अलौकिकता से रोशन है, परंतु हमारे सम्मुख शायद ये कुछ विशिष्ट आत्माएं हैं जिनके मुखमंडल का आलोक नितांत दीप्तिमान है। हे प्रिय आत्मन, इनका परिचय।
ये संपूर्ण आबू की धरा इन महान आत्माओं की ही तपस्या स्थली है और उस तपस्या का प्रतिफल ये पूरा ब्राह्मण परिवार है।
सिर्फ इतना ही नहीं, वरन समस्त विश्व की जननी है हमारी दादियां।
अच्छा, परंतु ये तो बड़ा साधारण वेशधारे हैं।
जी हाँ, इन साधारण वेशधारी आत्माओं के प्रेम पाश में स्वयं भगवान भी बंध चुका है।
इन पुण्य शिला दादियों ने अपना आत्मिक वात्सल्य देकर हम सबका परमात्मा से रूबरू मिलन करा दिया तथा विकारों की अग्नि में झुलसती रूहों को अपनी पवित्रता की छांव देकर राहत और सुकून से भर दिया है। इसलिए हम सब इन सर्वलोक वंदिता दादियों के सदा सदा के ऋणी हैं और सदैव यही भाव हमारे मन में हिलोरे लेते रहते हैं।
तेरी ममता की छाया में ये संसार, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में ये संसार, करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा है माँ तेरा दुलार। तेरी ममता की छाया में धन्य ये संसार।
ओ विश्व कल्याणी दादी माँ, आपके दर्शन का प्रसाद पाकर हम धन्य धन्य हो गए। आज ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हमने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी बंदगी कर करके उस बंदे परवर को मनाने में, और आप सबने तो अपनी सच्ची आशिकी से उस परम माशूक को रिझा ही लिया।
आज हमारी धूमिल हो रही कल्पनाओं को रोशनी का सैलाब मिल गया है। लगता है कि आपकी निश्चल और निस्वार्थ साधना ही सकल विश्व का कायाकल्प करेगी और ये सारी सृष्टि देवभूमि निश्चित बने।
What a mess! जहाँ ये रोशन होगा भारत फिर भरपूर बनेगा, जर्रा जर्रा गाएगा धिनताना। जहाँ ये रोशन होगा भारत फिर भरपूर बनेगा, जर्रा जर्रा गाएगा धिनताना। गूंजे फिजा में यही तरह नारे, रे कर सगा पा नी धाम पानी रे। गूंजे फिजा में यही तरह नारे, दूर जहाँ ये रोशन होगा, दूर जहाँ ये रोशन होगा भारत फिर भरपूर बनेगा, जर्रा जर्रा गाएगा धिनताना।
शांति। आबू तीरथ महान, जहां आते हैं शिव भगवान। अब देखेंगे बहुत ही सुंदर, दांतों तले उंगली दबाने वाला मलखम्ब नृत्य, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कन्याएं।
Oh, jump.
Krishna, Krishna.
You can't jump. Yeah, a magical mystery scene. Check it out, yeah, the hit house scene.
शांति। आपने देखा कितना सुंदर करतब, ये कोई सर्कस की कन्याएं नहीं है, ये है शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कन्याएं। तो जीवन में कितनी भी परिस्थिति आएगी ये कभी नहीं हारेगी, ये मल्ल युद्ध तो क्या किंतु दुनिया की कोई परिस्थिति भी इन्हें रोक नहीं सकेगी, और बाप दादा का नाम, आदरणीय दादियों का नाम सदा रोशन करती रहेगी। इसके साथ साथ यही नहीं किंतु सत्य की शंखनाद भी यही करेगी। तो अब अगला कार्यक्रम देखिए, सत्य का शंखनाद। आज गीता के लिए प्यारे बाप दादा कह रहे हैं कि दुनिया के सामने सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान शिव है। सचमुच ये कन्याएं वो भी सिद्ध करने के लिए तैयार है, और ऐसे सत्य का शंखनाद करने के लिए आ रही है शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की ये छोटी छोटी बच्चियां। हम सभी सत्य को सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने वाले हैं, तो क्या ये कन्याएं पीछे रहेगी? इन्होंने तो ये बीड़ा उठाया है कि हम भी बाप दादा का नाम रोशन करने और सत्य को सबके सामने सिद्ध कर देंगे। तो देखिए ये कैसे सिद्ध करती है। हमारी आदरणीय दादियों ने बहुत ही छोटेपन से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या नहीं किया, बहुत सारे स्थानों पर जाकर, बड़े बड़े महात्माओं के भी जाकर दादियों ने प्रत्यक्ष कर दिया कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव जो सत्य है वही सत्य ज्ञान दे रहा है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो आज ये छोटी बच्चियां भी इसी सत्य की खोज में आगे बढ़ रही है, और इन्होंने भी शंखनाद कर दिया है गीता का भगवान शिव ही है।
गुड इवनिंग। आज की इस सुनहरी शाम में मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी इस मंच पर एक खास मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका विषय है गीता जन जन के जीवन का आधार कैसे बने, और इसी चर्चा में अभी हमारे साथ हैं पंडित भक्त वत्सलम जी, प्रोफेसर विवेक जी, प्रख्यात समाजशास्त्री दीनानाथ जी और जाने माने वैज्ञानिक राकेश चौहान जी। मंच पर आप सभी का स्वागत है। हाँ तो पंडित भक्त वत्सलम जी, एक प्रश्न है आपसे कि गीता जन जन के जीवन का आधार बन जाए, इस विषय में आपका क्या विचार है?
गीता है सर्व वेदों की जननी, इसके बल पर थमी है धरनी, दुखों की याचक, नेह की दाता, हर मन की ये आनंद प्रदाता। मैं तो चाहता हूँ कि गीता सभी धर्म वालों के हृदय रूपी मंदिर की अधिष्ठात्री बन जाए और सभी इसको जीवन में आत्मसात करें।
सिर्फ धर्म वाले क्यों पंडित जी, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ और मेरा मानना है कि यदि हम विज्ञान में अध्यात्म का समावेश कर दें, तो विज्ञान के सारे संसाधन हमारे लिए केवल हितकारी ही सिद्ध होंगे, विध्वंसकारी नहीं। गीता के महत्ता में तो महान महान वैज्ञानिकों ने भी अपने श्रेष्ठ विचार रखे हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन।
जब जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो एक ही प्रश्न उठता है कि किस प्रकार भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है, बाकी सब ऊपरी लगता है।
समाज के लोगों को भी गीता आचरण की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पारिवारिक इकाइयों के टूटते हुए ढांचे को मजबूत बनाने में गीता ही आधार स्तंभ सिद्ध हो सकती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं भी देखता हूँ कि आज भले ही शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है, पर इसके बावजूद भी सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता और सम्मान जैसे गुणों का अभाव स्पष्ट रूप में देखने में आता है। इसलिए यदि युवाओं को गीता अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाए तो इन समस्त गुणों का समावेश उनमें स्वतः ही हो जाएगा।
ठीक कहा आपने। तो हम देख रहे हैं कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिन्हें गीता अध्ययन की आवश्यकता ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो उद्देश्य है कि गीता जन जन के जीवन का आधार बने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? समाज सेवी जी, आपका क्या कहना है?
मेरे हिसाब से समाज में नियमित रूप से गीता संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिए।
इसके साथ ही प्रतिदिन मंदिरों में व घर घर में गीता पाठ करना चाहिए।
ये सब तो ठीक है, पर देखा जाता है कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों में बड़े बुजुर्ग ही रुचि रखते हैं, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ऐसे सम्मेलनों में दिलचस्पी नहीं लेती। तो ऐसा क्या करें जिससे युवाओं के अंदर भी आध्यात्म का बीजारोपण हो और हम उन्हें गीता अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके?
क्यों न गीता के उपदेशों को बच्चों की सिलेबस में शामिल कर दिया जाए?
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, पर इसके अलावा और भी कोई सुझाव?
हाँ, एक काम करते हैं, गीता के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखते हैं। इससे युवा पीढ़ी गीता अध्ययन के लिए उत्सुक भी रहेगी और हम अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएंगे।
वेरी गुड आइडिया, इस सुझाव को लागू कर सकते हैं। क्या सभी इस बात से सहमत हैं?
हाँ बिल्कुल।
तो चलिए अभियान शुरू करते हैं और हमारे अभियान का नाम होगा गीता जागृति अभियान। अभी आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। एक और पंडित जी अपने शिष्यों के साथ गीता के श्लोकों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर जी अपने स्टूडेंट्स को गीता के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। समाज सेवी जी भी शहर के कोने कोने में जाकर इस अभियान का संदेश दे रहे हैं, इस अभियान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिक जी भी पीछे नहीं है, वे भी गीता का गहन अध्ययन कर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने में जुटे हुए हैं।
सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा दी और आज उनके परिश्रम का मूल्यांकन हो रहा है।
प्रतिभागियों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है।
सही बात है,
चलो हमारा प्रयास सार्थक रहा।
अरे गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव, ये क्या लिख दिया है?
होगा कोई सिरफिरा। छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, अभी बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है।
एक मिनट समाज सेवी जी, जरा कॉपी तो दिखाइए। आखिर क्या सोचकर स्टूडेंट ने ऐसी विचित्र बात लिखी होगी, इसे समझना चाहिए।
किसी ने यूं ही लिख दिया होगा भ्राता निखिल, आप क्यों इतना गौर कर रहे हैं?
यूं ही नहीं पंडित जी, इसने जो तर्क लिखे हैं वो बिल्कुल अकाट्य हैं। मेरे हिसाब से एक बार इस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए।
ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ।
आइए भाई साहब, आइए, कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक।
आपका शुभ नाम?
मेरा नाम गौरव मिश्रा है।
और भाई साहब का परिचय?
ये मेरे मित्र हैं संजय जोशी।
अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब दरअसल हमें ये पूछना था कि जहाँ सारी दुनिया वेद शास्त्र सब गीता का भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, फिर गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, आपने ऐसा किन तथ्यों के आधार पर कहा? इतनी बड़ी बात आपने कैसे कही?
सर, मैं बचपन से गीता अध्ययन करता आया हूँ और ये बात मैंने गीता में ही पढ़ी है।
गीता में पढ़ी है, ये आप क्या कह रहे हैं?
हाँ ये सत्य है, यदि आपको इनकी बातों पर यकीन ना हो तो आप स्वयं देव श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुन लीजिए।
कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयास मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात्।
हे अर्जुन, परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जन्म मरण रहित है, अकाल अभोक्ता अशरीरी है, अनादि अविनाशी और शाश्वत है। परमात्मा सर्वात्माओं के आदि पिता सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है।
इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि परमात्मा जन्म मरण रहित हैं, अशरीरी हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है, लेकिन देव श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, शरीर भी धारण करते हैं, उनके माता पिता भी हैं।
परमात्मा का रूप निराकार अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप है,
लेकिन देव श्री कृष्ण का तो अति मनमोहक सुंदर शरीर है।
परमात्मा सर्वात्माओं के व सभी देवात्माओं के भी आदि पिता हैं, इसीलिए उन्हें परम पिता कहा गया है।
लेकिन देव श्री कृष्ण जी तो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ देवता हैं।
कितना अंतर है दोनों की महिमा में। जहाँ श्री कृष्ण शरीरधारी हैं, वहीं परमात्मा शिव अशरीरी ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनकी महिमा तो अनंत है।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कदि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है।
अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है,
सत्यम शिवम सुंदरम।
यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है,
सत्यम शिवम।
हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है भगवान, ऐसा अलख निरंजन है,
सत्यम शिवम सुंदरम।
शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं, शिव महादानी हम योग्य पात्र हैं, बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है,
मधुबन शिव वसंत है।
अब आप स्वयं निर्णय कर लीजिए कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव है या शरीरधारी देव श्री कृष्ण।
अरे गीता का भगवान कोई भी हो, हमें इससे क्या प्रयोजन, हमें तो उसकी शिक्षाओं से काम है।
शिक्षाएं तो ठीक पंडित जी, परंतु ये जो कह रहे हैं वह तो गीता माता और भगवान श्री कृष्ण का सरासर अपमान है।
नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, ये उनका अपमान नहीं है। मैं तो गीता का दिल से सम्मान करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गीता पहले से भी कहीं अधिक गौरव से प्रदीप्त हो।
भाई साहब, हम आपका मतलब कुछ समझे नहीं।
सुनिए, भगवान वह जो सर्वधर्म आत्माओं को मान्य हो, निसंदेह श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, परंतु वे सिर्फ हिंदू धर्म के आराध्य देव हैं, और उनको गीता का भगवान मानने से गीता मात्र हिंदू संप्रदाय का शास्त्र बनकर रह गई है।
माफ कीजिए जोशी जी, पर ऐसी बात नहीं है, अन्य धर्म वाले भी श्री कृष्ण की आराधना करते हैं।
हाँ, ये तो सर्वविदित है ही, लेकिन वे अल्पसंख्यक होते हैं और यहाँ बात चल रही है बहुसंख्यक की।
इस बात को बताकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं?
हम ये बताना चाह रहे हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्म वाले मानते हैं, कोई लाइट के रूप में, कोई ज्योति के रूप में, कोई प्रकाश के रूप में, तो कोई एक ओमकार निराकार के रूप में।
इसलिए यदि ये सिद्ध हो जाए कि गीता ज्ञान दाता निराकार शिव है, तो हर धर्म हर संप्रदाय की आत्माएं जननी गीता के वात्सल्य रूपी आंचल में समा जाएंगी और सभी दिल से इसका सम्मान कर इसका अनुकरण करेंगे।
ओहो, ये तो कितनी अच्छी बात है। यही तो हमारे अभियान का लक्ष्य था कि गीता जन जन के जीवन का आधार बन जाए, सर्वधर्म मान्य हो जाए। यदि सभी निराकार को गीता ज्ञान दाता मान ले तो हमारा उद्देश्य सहज रूप से पूर्ण हो जाएगा।
ये तो ठीक है, परंतु यदि हमसे अन्य धर्म वाले ये प्रश्न करें कि हमारे धर्म शास्त्रों में भी तो जीवन को उच्च बनाने की श्रेष्ठ बातें लिखी हुई हैं, फिर गीता शास्त्र का अनुकरण ही क्यों किया जाए?
देखिए, जितने भी पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, चाहे बाइबल, चाहे कुरान, चाहे अन्य सभी वेद पुराण, ये सारे ग्रंथ दिव्य आत्माओं द्वारा रचित हैं, परंतु गीता ही एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसे स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने रचा है। इसलिए इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
इसमें जमीन आसमान के अंतर की क्या बात है?
यही तो मुख्य बात है कि जहाँ सभी धर्म ग्रंथ दिव्य और पवित्र आत्माओं की रचना है, वहीं गीता इन दिव्य आत्माओं के भी पिता परमपिता परमात्मा की रचना है।
चलिए, सभी धर्म वाले यदि गीता को अपना धर्म ग्रंथ मान भी ले तो इससे समाज को क्या फायदा होगा?
यदि सभी धर्मों की आत्माएं गीता को ही अपना एकमात्र धर्म ग्रंथ मानेंगी तो धर्म भेदों पर आधारित झगड़ों का तो नामो निशान तक मिट जाएगा। सबके हृदय के तारों पर एकता के महामंत्र झनझना उठेंगे और अशांति के किले पर शांति की विजय पताका फहरेगी।
वाह, आपकी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मन से निराशा का पत्थर मानो दरक गया हो और इसकी झिर्रियों से आशा की एक किरण प्रस्फुटित हो गई हो। क्यों भ्राता निखिल?
हाँ, ये बातें तो बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है, पर भाई साहब, एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि फिर कृष्ण अर्जुन के संवाद में देव श्री कृष्ण की क्या भूमिका है?
दरअसल देव श्री कृष्ण ने ही निराकार परमात्मा शिव द्वारा उच्चारित गीता के महावाक्यों को सर्वप्रथम आत्मसात किया था, इसीलिए वे प्रथम गीता पुत्र कहलाए। इसी गीता श्रवण के फल स्वरूप उन्हें सर्वोच्च देव पद प्राप्त हुआ और वे नई दैवी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बने। दैवी दुनिया के राजकुमार, क्या हम भी दैवी दुनिया में आने के योग्य पात्र बन सकते हैं?
बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भी मनुष्य आत्माएं वर्तमान समय निराकार परमात्मा शिव द्वारा उच्चारित गीता ज्ञान का आचरण करेंगी, वह स्वयं को काम क्रोध आदि पांच विकारों से मुक्त करेंगी, वे सभी सहज ही इस दैवी दुनिया में आने की अधिकारी बन जाएंगी।
हाँ जरूर, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम अवश्य ही ऐसी दैवी दुनिया में आने का पुरुषार्थ करेंगे जहां देव श्री कृष्ण का स्वर्णिम राज्य होगा।
स्वर्ग धरा पे आए रे, स्वर्ग धरा पे आए रे, जहाँ बजाने मुरली की धुन राधे कृष्ण आए रे, स्वर्ग धरा पे आए रे, यह रचाने रास देखो गोप गोपी आए रे, चले रास देखो गोप गोपी आए रे, गाय रे दिलिए गाय, गाय रे दिलिए गाय, गाय रे दिलिए गाय, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, गाय रे दिलिए गाय, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे। महल हमारा न्यारा न्यारा, हीरे मोती से सजेगा नगर हमारा प्यारा प्यारा, सोने की नगरी में होगा महल हमारा न्यारा न्यारा, हीरे मोती से सजेगा नगर हमारा प्यारा प्यारा, सुखदाई है सूरज आता चंदा शीतल का बरसाता, यहाँ का हर एक सितारा शांति का दान देता, सदा बहार मौसम होता, आएगी देवी दुनिया आएगी नई दुनिया, गाय रे दिलिए गाय, गाय रे दिलिए गाय, गाय रे दिलिए गाय, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे, गाय रे दिलिए गाय, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे।
ये सवाल लग रहा है कि सचमुच जल्दी ही स्वर्ग आने वाला ही है। बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, ये तो सचमुच सत्य का शंखनाद कर चुके। अब अंतिम विदाई एक नित्य नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है शक्ति निकेतन इंदौर हॉस्टल की कुमारियों द्वारा।
आइए अंतिम विदाई से पूर्व जाने कि क्या है शक्ति निकेतन। एक सर्वश्रेष्ठ कृति शक्ति निकेतन, जिसने एक दैदीप्यमान सूर्य की भांति अपने ज्ञान प्रकाश से कन्याओं के जीवन को आलोकित करने का बीड़ा उठा रखा है। इसकी दहलीज पर कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि यहाँ लघु भारत से मटाया हो। जी हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के लगभग 23 प्रांतों व विदेश की कन्याएं भी यहाँ निवास करती हैं। यहाँ भौतिक कलाओं जैसे कि पाक कला, संगीत एवं नृत्य कला, चित्रकला, भाषण, मेहमान निवाजी आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग से भरपूर बनाकर उनमें एक खरे सिक्के की खनक पैदा कर दी जाती है। यहाँ फैशन नहीं अपितु कुमारियों का मर्यादाओं से श्रृंगार किया जाता है। यहाँ छठी से स्नातक स्तर तक की कन्याएं अध्ययनरत हैं। यहाँ के कक्षों व गलियारों में इन्हीं बालिकाओं द्वारा तैयार खूबसूरत कलाकृतियां टंगी हुई हैं। इस शक्ति निकेतन के उद्गाता ओम प्रकाश भाई जी के भीतर तो एक ऐसा खरा व्यक्तित्व है कि उनके सानिध्य से मामूली कन्या भी मामूली नहीं रह जाती। तो आइए देखें ऐसे शक्ति निकेतन की अग्रिम प्रस्तुति, अंतिम विदाई।
अरे गप्पू की अम्मा, अरे गप्पू की अम्मा।
ओहो, काहे को गला फाड़ फाड़ के घंटी घनघना रही हो? आ रही हूँ, जरा शांति पकड़ो।
अरे गप्पू की अम्मा।
क्या है, अरे चिल्ला क्यों रही हो? अभी मैं बहरी नहीं हुई हूँ।
अरे गप्पू की अम्मा।
आ,
ये तो बता,
क्या
मेरी थैली में आखिर छुपा क्या है?
क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जन्म पत्री पे जूता मार के हलवाई से दो समोसे लाए होंगे रस्ते में से, और क्या?
अरे नहीं पगली, माल है माल, किस्मत का कमाल।
काहे को कर रहे हो मेरे साथ धमाल है? अब पहली बुझाना बंद करो और मुंह से कुछ फूटो।
अरे ये देख, ये देख सोने का हार, ये सोने के कड़े, और ये देख ये कंदोरा, इतना बड़ा कंदोरा पीवर सोने के।
हैं, क्या कह रहे हो, असली सोने के?
हाँ भगवान, असली, एकदम असली सोना है।
मुझे तो विश्वास ही ना हो रहा।
अरे कर ले विश्वास, कर ले सेठानी, सब लक्ष्मी मैया की कृपा है। अरे खुद चल के आई है अपने द्वारे।
कैसे, कहाँ से आए?
अरे आज एक मूरख ग्राहक आया था दुकान पे इनको बेचने के लिए, मैंने घुमाई चकरी, अपनी लच्छेदार जुबान से यकीन दिलवा दिया उसको के खोटी है भैया, ये सारी रकमें बिल्कुल खोटी है। दिखने में ठीक है तो चल 1,000 रुपया दे सकता हूँ मैं। हाँ बस सिर्फ 1,000 रुपया, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं। हाँ,
और वो मान भी गया।
हुआ क्या कि उसी समय जब वो आया था ना ग्राहक, उस समय अपने इलाके का थानेदार अपनी बेटी को कुछ हार वार दिलवाने को लेके आया दुकान में। उसको देखते ही ग्राहक बोला, चल सेठ जल्दी से मेरे को 1,000 रुपया निकाल दे, मेरे को जरा जल्दी है। बस मैं समझ गया कि कोई चोर उचक्का दिखे, चोरी का माल लेके आया है, पर अपने को क्या, 1,000 रुपये दिए और उसका माल अंटी कर लिया। बस नीनी करते ही 6-7 लाख का माल है। आज तो
किस्मत में लॉटरी लगनी थी सेठानी, लग गई। आ
ये गलत किया है तुमने, बिल्कुल गलत। कह देती हूँ, ऐसे किसी को धोखा देके माल हड़पना ठीक नहीं है। कल को छापा पड़ा ना तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की।
अरे बावड़ी, मेरे को क्या है मैं समझ रखा है तूने? अरे कल सुबह दुकान पे जाने से पहले इनको गला दूंगा, उसके बाद तो खुद लक्ष्मी मैया भी नहीं पहचान सकेगी कि ये रकमें पहले कैसी दिखती थी। ले जा 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 जा, इनको जल्दी से तिजोरी में रख दे। चल जा, तू जा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, उसके बाद पेट भर के भोजन करूंगा, फिर टीवी पे न्यूज देख लेंगे और जल्दी से सो जाएंगे। कि भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना भगवान इनको गलाने के लिए। जा 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 जा, तू जा, ले जल्दी जा।
मैं तो कोई नहीं राखू ये चोरी का माल, तुमको जो करना हो करो।
अरे इस लुगाई का भी क्या करूं, चल चल मैं ही रख देता हूँ। ओ जय लक्ष्मी मैया, स्वामी जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, स्वामी जय लक्ष्मी मैया।
नमस्कार, मैं हूँ धूम धड़ाका न्यूज चैनल की संवाददाता कोकिला गुरुस्कर। अपने कानों के पर्दे साफ कर लीजिए, नींद में हो तो जाग जाइए, लेटे हो तो बैठ जाइए और बैठे हो तो कृपया खड़े हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको सुना रही हूँ वो खबर जो बदल देगी आपकी जिंदगी। ये खबर है एक भविष्यवाणी, ऐसी भविष्यवाणी जिसे आपने भी कई बार सुनी होगी, लेकिन विश्वास करने की हिम्मत नहीं है तो जुटाइए हिम्मत और कर लीजिए विश्वास कि माया सभ्यता का हो रहा है अंत, कैलेंडर हो रहा है खत्म, अर्थात आप खत्म, हम खत्म, धरती पे जिंदगी खत्म, आसमान में परिंदे खत्म, आ रहा है कयामत का पल, भयानक भूकंप धरती पर, भीषण सुनामी तूफान समंदर में, हजारों ज्वालामुखी पहाड़ों पर, एक साथ जाने कितने अंधड़, एक साथ और कलयुग का अंत तुरंत, मौत की तबाही, विनाश, महाविनाश, सर्व विनाश, गुड नाइट। अगर आज किस्मत में नींद लिखी है तो सो जाइए, हैव स्वीट ड्रीम्स इफ यू कैन, गुड बाय। सो सको तो सो के देखो। नमस्कार, आज का समाचार यहीं समाप्त होता है।
गुड नाइट। अरे गप्पू की अम्मा, ये तो बता अब रात भर नींद कैसे आएगी, डर के मारे जान निकल जाएगी।
ओ भाई साहब, मतलब सेठ जी, एक पागल ने कुछ भी न्यूज सुना दी और एक समझदार ने सच मान ली। वाह सेठ जी वाह, चलो चुपचाप सो जाओ, चलो चलो, गुड नाइट।
गुड नाइट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश चहुं लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश चहुं लोक उजागर। सेठ, बड़े बड़े खर्राटे क्या मार रहा है? कौन है, कौन है भैया, कौन बोल रहा है भैया, कौन है? मैं हूँ मैं।
कौन हो दादा? अरे दादा तुम कौन हो यार, क्यों? अरे कहीं नाम तो होगो तुम्हारो, यहाँ आधी रात के कोई का घर में घुसने का मतलब है?
मतलब खत्म, जीवन लीला खत्म, तुम्हारे दिन खत्म। जेठामल, तुम्हें ले जाने को आया हूँ।
कहाँ पे भैया, कहाँ पे ले जा रिया हो?
धरती से दूर D5951234 ब्लॉक में।
ये कहीं है भैया, यो कहीं है, यो 1 2 3 4 5 है।
ये नर्क की खोली है जिसमें तुझे अब रहना है।
नरक की खोली? अरे कहीं मतलब है जा?
मतलब तुम्हारे प्राण निकाल कर मैं तुम्हें इस खोली में पटकने वाला हूँ। ये सातवें नरक का स्लम एरिया है।
अरे यमदूत भाई साहब, आपको आपको जो लेना हो ले लो यार। सोने का हार ले लो, कड़े ले लो, घर ले लो, दुकान ले लो, पर मेरी जिंदगी बख्श दो भैया।
बस अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हारा अंत निकट है। कल दोपहर 12 बजे महाप्रलय होगा, तूफान उठेगा और तुम उस अंधड़ में तिनके के समान उड़ जाओगे। तुम्हारी कोठी की दीवारें ताश के महल की तरह भर भरा कर बैठ जाएंगी। सब कुछ नस्तो नाबूत हो जाएगा। तुमने जिंदगी भर झूठ और लूट का खेल खेला है, अब तुम नहीं बचोगे।
अरे अरे यमदूत भैया, अरे बचा लो भैया, इस बार बचा लो, माफ कर दो ना, आगे से एक बार भी झूठ नहीं बोलूंगा भैया, चोरी का माल नहीं लूंगा भैया, अरे चोरी के माल की तरफ नजर भी नहीं उठाऊंगा भैया, माफ कर दो मेरे को, बचा लो।
नो नो मीन्स नो, तुम्हें मरना होगा। कल तुम्हारे लिए काल कलरव होगा, कल महाप्रलय का दिन है तुम्हारे लिए। उसके बाद कोड़े ही कोड़े पड़ेंगे तुमको, सटासट सटासट, सुबह शाम कोड़े ही कोड़े, फिर उबलते हुए तेल के कड़ाव में फ्राई, डीप फ्राई, तुम्हारे एक एक अंग का भजिया बनाया जाएगा। बर्निंग, एवरी ऑर्गन बर्निंग। गेट रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स मिस्टर जेठा, कल तेरा खेल खत्म, पैसा हजम। जेठा
नहीं, अरे बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ।
चिल्ला ले जितना चिल्लाना है, चिल्ला ले जेठामल, कल तेरा अंत होगा ही होगा। ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे, गुड बाय जेठा, गुड बाय।
अरे अरे भाई साहब, ओ भैया, ओ भैया यमदूत जी, ओ यमदूत भैया, भाई साहब मेरे मालिक, ओ यमदूत भैया किधर हो यार, कहाँ चले गए भैया?
अरे बचाओ, कोई बचाओ मेरे को, अभी नहीं मरना है, बचाओ, अभी बहुत काम बाकी मेरे को, बचाओ, अरे कोई बचाओ रे।
क्या हुआ, किससे बचाना है, कहाँ, क्या हुआ?
अरे अरे गप्पू की अम्मा, ये तो बता, तुझे यमदूत यहाँ कहीं दिखता है क्या?
ओफो, ये न्यूज वाले का भूत आपके दिमाग से उतरा ही नहीं है। अरे नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, सो जाओ, चलो 3:30 बज चुके हैं।
सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कैसे सो जाओ, अरे अब नींद कैसे आ सकती है भैया? अरे, अरे मेरे पास अब तो 9:30 बचे हैं बस, अब 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 ने आधो घंटो, 12 बजे खत्म खत्म, 9 घंटे बाद मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा भैया, मेरा राम नाम सत्य।
ओफो, लगता है न्यूज के डर से कोई बुरा सपना देख लिया है। इनका डर तो भगाना ही पड़ेगा।
मेरे को नहीं मरना।
चलो
मेरे को नहीं मरना।
चलो 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 सुनो, अभी 9:30 बचे हैं ना, बोलो क्या करूँ तुम्हारे लिए, कुछ खाना है?
क्या 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 खिला सकती है तू?
जो तुम बोलो, पकोड़े, जलेबी, समोसे, रसगुल्ला, लौंग लता, कुछ भी बोलो।
हाँ हाँ, सब थोड़ा थोड़ा ला दे, आखिरी बार कम से कम सबका एक एक बार स्वाद ले लेता हूँ। जा लिया।
पियोगे कुछ? कुछ पियोगे वो भी लाऊं?
ओ अंग्रेजी पढ़ी है, वो डालना है गिलास में, आज नीट पी लेता हूँ आखिरी बार। जा लिया। मेरा बचना कठिन है भैया, 12 बजे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, अरे राम।
चलो चलो चलो, ये सब लाती हूँ, पर तब तक चलो भगवान का नाम ले लो, जीवन भर नहीं लिया आज ले लो, शायद शांति मिल जाए।
हाँ, ये तो ठीक कह रही है, शायद शांति मिल जाए, ले लेता हूँ भैया। वो भगवान का नाम तू कैसे लेती है, वो क्या है?
श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
हाँ
यही तो गाती हूँ।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, कल दोपहर 12 बजे हरि हरि।
हे प्रभु,
ऐसे नारायण बारायण करने से क्या होगा भैया, इतने सारे मकान जायदाद धन दौलत सब इकट्ठे कर रखी है, मेरे बाद इनका क्या होगा भाई साहब, मिजान बिठाना पड़ेगा, ये नारायण नारायण करने से कहीं नहीं होगा भैया, बुलाओ लुगाई क्या। अरे ओ गप्पू की अम्मा।
हाँ बोलो क्या है?
अरे ये तो बता, मेरे बाद में जायदाद का क्या होगा? अच्छा चल 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 चल, तू वो सब छोड़ दे, अरे वो खाना पीना छोड़, तू यहाँ बैठ जरा, थोड़ी देर बाद पकाना, अभी मेरी बात सुन। देख मेरे पास में 3 मकान है, ठीक है? मैं एक दुकान है ना, ठीक है?
अच्छा, इस मकान में तो हम रहेंगे।
हाँ
ठीक है।
हाँ ठीक है।
दूसरा मकान अनाथ आश्रम को दे दो, बेचारे अनाथ लोग रह लेंगे।
हाँ तू कहती है तो सोच सकते हैं, पर नहीं, उस अनाथ आश्रम के मैनेजर को तो मैं नहीं दूँ, बहुत अकड़ू है, नमस्कार का जवाब तक ठीक से नहीं देता है, उसको तो कोई कीमत पे नहीं दूँ मैं। हाँ
अच्छा चलो ठीक है, मंदिर को दान में दे दो, मंदिर ट्रस्ट वाले वहाँ मंदिर बना लेंगे।
मंदिर बना लें वो तो ठीक है, पर ये ट्रस्ट वाले माँ घोटाले बाज हैं, अरे धर्मशाला का कमरा में कूलर ने पंखे लगाने को 5,000 रुपए दिए थे, सब काम करवा लिया पर पंखों और कूलर पे मेरा नाम तक नहीं लिखवाया है, कोई ऐसे लोगों को दे रहा हूँ मेरा पैसा फोकट में? नहीं दूंगा। हाँ सब मेरे गप्पू के लिए रखूंगा। हाँ तो सही, कोई नहीं देना मेरे को कोई को।
और इस तरह नाना करते सुबह हो गई, झूठे अहंकार और झूठी मान्यताओं ने एक भी शुभ काम के लिए सहमति नहीं बनने दी, अमूल्य जीवन के 4 घंटे फिर से बर्बाद हो गए। और सुबह ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आई हुई एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने घर की घंटी बजाई।
ओम शांति जेठा भाई।
ओम शांति बहन जी, ओम शांति, आओ बैठो।
अभी बैठने का समय नहीं है, ध्यान का समय हो चुका है जेठा भाई, जल्दी चलिए, बहन जी को भी बुला लीजिए।
अरे नहीं बहन जी, आज कोई ध्यान व्यान नहीं होएगो भैया, आज नहीं जा सकेंगे अपन ध्यान के लिए बहन जी।
क्यों जेठा भाई, क्या बात है? आज तबीयत कुछ नाजुक लग रही है।
रात भर से नींद ही नहीं आई है भैया।
क्यों, ऐसी क्या बात हो गई?
अरे बहन जी,
आज दोपहर 12 बजे हमारो राम नाम सत्य होने वालो है। मरने वालो राम नाम सत्य है। बोलो बड़ो मस्त।
क्या बताऊं बहन जी, रात को न्यूज चैनल पर महाविनाश की न्यूज सुनकर सोए थे। रात में कोई सपना देख लिया कि 12 बजे इनके जीवन में प्रलय आने वाला है, और रात के 3 बजे से मुझे भी जगा कर रखा है। क्या बताऊं?
कहीं करूं, अब लुगई है तो 12 बजे जब मैं मरने वाला हूं तो जगाना तो पड़ेगा नहीं बहन जी।
ओहो, गंभीर मामला है ये तो।
हाँ, बहुत गंभीर है।
जेठा भाई, एक बात कहूँ?
हाँ, बोलो।
अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना।
हाँ, बोलो ना बहन जी, आपकी बात में बुरी लगने जैसी कहीं बात हुई सके? बोलो, आप तो बोलो।
जेठा भाई, अव्वल तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा होगा नहीं। पर अगर हुआ भी, प्रलय आ भी गया, आपकी मृत्यु हो भी गई, तो चिंता क्यों करते हो?
क्यों?
स्वयं शिव परमात्मा ने कहा है कि आत्मा को कभी मौत आती ही नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है।
अच्छा?
अविनाशी है।
हो हो।
हाँ, शरीर जरूर नश्वर है।
अच्छा अच्छा अच्छा।
वैसे भी रूप बदलते रहना तो शरीर की आदत है।
हो, हाँ।
देखो, आप पहले बच्चे थे, हाँ? थे कि नहीं थे?
हाँ, यो ही होंगे भैया, बड़ो हुए तो बच्चों तो होंगे ही सही।
फिर नौजवान हुए,
हाँ?
फिर जवान हुए,
हाँ?
फिर प्रौढ़ हुए,
हाँ?
आगे बुढ़ापा,
हाँ?
और फिर मरकर पुनः नया जन्म,
हाँ?
नया शरीर लेंगे। बोलो हाँ कि ना?
हाँ, हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप।
तो फिर दुख क्यों, चिंता क्यों? हमारी आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती जेठामल जी।
ओहो, हाँ, ये तो समझ में ही नहीं आई थी बात। अरे बहुत ही बढ़िया। अरे हाँ, आपने पहले भी एक दो बार ये बात समझाई थी पर समझ में नहीं आई, पर अभी अंतिम समय में, जाने के समय में ये बात समझ में आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, शरीर मरे है, आत्मा तो मरे ही नहीं है। हाँ,
ओ मेरे आत्मिक भाई सुनो,
हाँ?
हम सब आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर खेल खेलने आई हैं।
ओहो,
ये सृष्टि तो परिवर्तनशील है।
अरे थारी की,
हाँ। हमारा असली घर तो सूर्य चांद तारांगण से पार अलौकिक प्रकाश युक्त परम धाम है।
ओहो,
जो ज्योति बिंदु परमात्मा शिव का भी मूल निवास स्थान है।
ओ धन्य हो, धन्य है प्रभु, धन्य है।
बस उसकी गुणों और शक्तियों का ध्यान करो तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे।
ओहो, अरे बहन जी, इस अंतिम समय में आपने तो हमारी आँखें खोल दी। अब मैं प्रभु का भजन में ही मगन रहने वालों हूँ। बस जब आना हो मौत के आई जाए, रात भले ही दोपहर के 12 बजे आए कि सुबह के 7:30 बजे आ जाए, कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं। हाँ,
अरे वो गप्पू की अम्मा, अरे बैठी कहीं है, चल भगवान को नाम शुरू कर ले।
चलो चलो चलो, बैठ जाए भजन के लिए। चलो चलो,
चलो। अब तो मनोकामना है ये मेरी, अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला।
जेठामल, मैं आ गया हूँ। यमदूत भैया, आप अभी से आ गए? अरे अभी तो 12 कहाँ बजे हैं? पर क्या फर्क पड़ता है 12 बजे या 7:30 बजे? चलना है तो चलेंगे, ये देश तो बेगाना है, शरीर पुराना है,
अब नहीं कोई बहाना है, मुझे प्रभु के घर जाने में आनंद ही आनंद आना है। ले चलो जल्दी परिवर्तन, 4 घंटे में कायाकल्प। भगवान आपकी माया विचित्र है, आपकी रचना न्यारी है, फिर भी सबको प्यारी है। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। जेठामल, ये चमत्कार कैसे हो गया?
दादा यमदूत जी, पूरी जिंदगी जिस काम के लिए छोटी पड़ गई, अंतिम घड़ियों में इन ब्रह्मा कुमारी बहन जी ने वो ईश्वरीय खजाने के दर्शन करा दिए। अब मैंने अपना मन बदल लिया है, मन की सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं समाप्त हो गई है।
अब ये भगवान के राज्य के अधिकारी बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया है इच्छा मात्रम अविद्या, अंत मति सो गति।
कमाल है भैया, कमाल है। जेठामल भाई, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब परम प्रिय परमात्मा के घर में आपका स्वागत है। धन्य है जेठा भाई, आप धन्य है। यम भैया, इजाजत हो तो इस अंतिम वेला में एक अंतिम भजन और कर लूं क्या? है बोलो, आपकी इजाजत है? कर लो कर लो, वैसे भी अभी 12 बजने में काफी टाइम बाकी है।
अरे गप्पू की अम्मा,
बोलो गप्पू के पप्पा,
तेरा प्रिय गीत फिर से शुरू कर ले, भगवान भजन को शुरू कर ले।
इत चली रे उमरिया, कछु सोचो रे भैया,
सोचो रे भैया, कछु सोचो रे भैया,
सोचो रे भैया, कछु सोचो रे भैया।
पंछी भूलो डगरिया, कछु सोचो रे भैया,
पंछी भूलो डगरिया, कछु सोचो रे भैया।
बीत चली रे उमरिया, कछु सोचो रे भैया। कोठी कुठरिया, कछु सोचो रे भैया,
चौपट कोठी कुठरिया, कछु सोचो रे भैया।
बीत चली रे उमरिया, कछु सोचो रे भैया,
बीत चली रे उमरिया, कछु सोचो रे भैया।
ओम शांति। अब मैं असीम स्नेहागार आदरणीय दादी जानकी जी को, स्नेहपुंज दादी रतन मोहिनी जी को, अपने वरदानों की अनुपम वर्षा से शक्ति निकेतन की कुमारियों को सराबोर करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ में आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी भी और करुणा दीदी भी जहां कहीं भी हो वे भी मंच पर आ जाएं। दादी जी की वरदानी छत्र छाया के बिना तो हमारा हर काम अधूरा है। एक मिनट, दादी जी के लिए आदरणीय रमेश भाई जी भी मंच पर पधारे। आदरणीय रमेश भाई जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दादी जी के लिए कुछ भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। दादी जी, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, दादी जी हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला ही उजाला हो मुकद्दर में आपके इतना, उजाला ही उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना, कि सूरज भी सदा रोशनी मांगे आपसे, कि सूरज भी सदा रोशनी मांगे आपसे। शक्ति निकेतन की कुमारियां जाएं कहीं भी हैं मंच पर आ जाएं।
आज रात्रि क्लास आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई का था, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोग्राम में बहुत समय हो गया, इसलिए वो कल होगा रात्रि 9 से 10।
इस गूंजे आनंद सरगम कार्यक्रम के मार्ग निर्देशक भ्राता मनोहर सोनने सर भी मंच पर आ जाएं। शक्ति निकेतन की कुमारियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गूंजे आनंद सरगम के मार्गदर्शक मनोहर सोनने सर भी मंच पर आ जाएं। ओम शांति। अभी दादी जानकी जी आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का स्वागत सम्मान करेंगे। पहले रमेश भाई जी का बोलो। मैं आदरणीय रमेश भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर वे भी कन्याओं को अपने शुभ आशीर्वचनों से भरपूर करें।
ओम शांति। आप सबकी ओर से जिन बहनों ने कन्याओं ने यहाँ पर रंगमंच के ऊपर अपने कलाकृतियों पेश की, उन सबको आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। बाकी मेरा गीत नहीं बजाया चलते चलते वाला, मेरा गीत नहीं बजाया चलते, मेरा गीत चलते
चलते चलते चलते चलते कोई मिल गया था, यही कोई मिल गया था।
रहे हैं ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे
मैंने ओम शांति बोले बोला कर बाबा ने कहा वाह बच्चे वाह आज हम कहते वाह शक्ति निकेतन वाह वाह शक्ति निकेतन वाह नहीं पर आ रहे वंडरफुल बाबा वंडरफुल बाबा के बच्चे ये ओम प्रकाश का जन्मदिन में जा रहा है अल्लू का जन्मदिन नहीं उसने अनेक आत्माओं के सेवा करते आज मुझे मेरा जो मैं आत्मा शरीर में हूं ना तो आत्मा शरीर में हूं मुझे ये देखने के लिए भाग्य मिला चलते चलते वाला गीत गाया ओम शांति रमेश भाई क्या बोलते हो समझते हो
बोल दिया बेटे तो
ओम शांति
ओम शांति
ओम शांति तो शक्ति निवास क्या शक्ति निकेतन शक्ति निकेतन में पढ़ने वाली बहने उन्होंने आज बाबा के महावाक्यों पर जो अच्छी रीत से डायलॉग ड्रामा आदि बना के सिद्ध किया है मैंने तो कहा दादी जी के बाद ये पहली बार बहुत समय के बाद ये इंदौर से शक्ति निकेतन जागृत हुआ है जो इतने समय के बाद आज ऐसा ड्रामा बनाया है देखो सभी भाई बहन देख रहे हैं जितना दिखा करके सबको खुशी दी है जितना आप सब ने मेहनत करके खुशी खुशी से ये पाठ बजाया है उससे सौ गुना जास्ती हम आपको मुबारक देते हैं मुबारक देते हैं मुबारक देते हैं सदा ऐसे उमंगों में रहकर बाबा के महावाक्यों को अपने कल्चरल से सिद्ध करते जनता को बताते जाना आखिर वही बाप अभी आकर के दुनिया को कैसा बना रहा है वो स्वर्ग का एक बड़ा वंडरफुल दृश्य बना के दिखाना ओ उसके लिए पहले से ही मुबारक ओम शांति
एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा आजकल आप जमाना आज का जमाना है रीमेक करने का अर्थात जो पुरानी फिल्म जो होती है ना उसको फिर से प्रस्तुत करना रिवाइज करना मैटर वही होती है गीत वही होते तो उसी के हिसाब से हमारे यज्ञ के पीस कॉन्फ्रेंस आदि के अंदर जो शिवरात्रि है एकता में अनेकता आदि आदि जो ड्रामा हुए थे उसको हम रीमेक करना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि वो रीमेक का कारोबार अगर शक्ति निकेतन की बहनें जो है वो कार्य उठा ले एक एक घंटे का वो ड्रामा जो होता है तो पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा सारी दुनिया के अंदर फिर से वही ड्रामा का आवाज ड्रामा के गीत अभी प्रस्तुत हो सकते हैं। तो हमारी ओम प्रकाश भाई और उनके सभी साथियों से नम्र विनती है कि इस कार्य के अंदर आप सहयोग देंगे तो आपका कारोबार और गोडीवुड स्टूडियो का कारोबार सारी दुनिया में पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा प्रसिद्ध हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। अभी रायगढ़ कोरबा की दो बच्चियां बहुत सुंदर नृत्य कर रही हैं, गुनगुनाता है मन। एक छोटा बच्चा,
क्या नाम है?
नितिन इसका नाम है। इसकी माँ कहीं हो या पिता तो वो उसको स्टेज पर आकर ले जाए। रायगढ़ कोरबा की दो छोटी कन्याएं जिनका नृत्य था वो आ जाए। गुनगुनाता
प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन। अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले,
अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले, कहते नयन
मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। गुनगुनाती ये पवन मुस्कुराता ये चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का।
नदियों का पानी बीती सो बीती सुनाती कहानी,
रात गई सवेरा छाया उजाला, भूल जा हमको तो क्यों मतवाला।
हार की बाराती आई स्वर्ग की सौगात लाई, मंगलम आनंदम परम सुखम
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।
गई चांदनी सुरोस सजे रागिनी अपनी धुन में है मगन। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम गुनगुनाती पवन मुस्कुराता ये चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का पंछियों के सरसंगम सातों रंग के सरगम झूमे गाए ये
अपनों से आज मिले
अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले कहते नयन।
मंगलम
मंगलम आनंदम परम सुखम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम
बहुत सुंदर नृत्य किया इन बच्चों ने। अभी लास्ट मेरा बाबा आ गया, मुंबई का मंगेश भाई गीत गा रहा।
ओम शांति। गीत के बोल है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओ बाबा, बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा बाबा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा। ज्ञान की मुरली सुनाते बाबा, ज्ञान का सागर मेरा बाबा। ज्ञान की वर्षा करते हैं बाबा, ज्ञान का सागर मेरा बाबा, मेरा बाबा। जीवन सुखों से भरता है बाबा, सुख का सागर मेरा बाबा, मेरा बाबा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा बाबा, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा बाबा।